आपके साथ भी हो सकता है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इंतजाम हुआ? अभी कहाँ हो? ठीक है, ओके। ये रही हमारी आज की कमाई।
वाह वाह मशहूर ताजिर, क्या आप अपनी कामयाबी का राज बता सकते हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि ना आपने किसी को धोखा दिया और ना उनका माल खाया है। जरा हमारी भी रहनुमाई करें, शायद हम भी आपके नक्शे कदम पर चलकर कुछ हो जाए।
सलाम अलैकुम। देखो फरवर्स, मैं जानता हूँ कि बहुत वादा खिलाफी की है और मेरी बातें, मेरे जवाब सब बार बार दोहराए जा रहे हैं।
तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें दोहराते हो? चोर कहीं का।
फरीदपुर, ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम? चीखो पुकार कर रहे हो, कॉलर पकड़ रहे हो, हंगामा मचा रहे हो। यहाँ मेरी इज्जत है।
अच्छा, और मेरी कोई इज्जत नहीं?
क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरी गलती है। तुम तो बोलने ही नहीं देते मुझे।
कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते के अंदर हिसाब किताब साफ करो, नहीं तो जाकर हाजी साहब से बता दूंगा सब कुछ, समझे?
हाजी साहब से क्या ताल्लुक? फरीदपुर, ये मेरा और तुम्हारा मामला है, हाजी साहब को बीच में ना लाओ तुम।
हाँ, इसलिए क्योंकि हर दिन तुम यही बात दोहराते हो, शायद हाजी साहब को मालूम हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, इस तरह से हाजी साहब को पता चल जाएगा कि उनका दामाद फ्रॉड है।
इस मामले का हाजी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर तुम्हें मालूम है कि मैं ठग नहीं हूँ।
नहीं हो तो तुम्हारे हाथ में क्या है? जलाल, इस हाथ में मेरे पैसे हैं, एक हफ्ते का मौका है तुम्हारे पास, सिर्फ एक हफ्ते का।
फरीदपुर्स, क्या हुआ?
कुछ नहीं, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं।
क्या मतलब इंतजाम नहीं हुआ? ये क्यों नहीं सोचते कि फरीदपुर एक हफ्ते के बाद जब पैसे लेने आएगा और हमारे पास पैसे ना हुआ तो हमारा क्या हाल करेगा?
रोजा रखकर इतना ज्यादा टेंशन मत लो, बीमार पड़ जाओगे, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा?
अरे ज्यादा फरीदपुर यहाँ आकर मारपीट करेगा या फिर जाकर हाजी साहब से कह देगा, मर तो नहीं जाओगे, कुछ सोचूंगा, बेफिक्र रहो।
अच्छा, मुझे याद है जब तुम मुझसे कह रहे थे कि जाओ कहीं से पैसे लाओ तो तुम्हारी जुबान बड़ी चल रही थी, कह रहे थे इसका दुगना बुतीक से मिल जाएगा, हालात बदल दूंगा। इतना कहा कि मैंने कर्ज ले लिया। जब बात करूं तो मेरी तरफ देखो। फरीदपुर्स ने अगर हाजी साहब से कह दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा, समझ रहे हो?
तुम्हारा पेट खाली है, कुछ खा लो।
क्या बताऊं सईद। समझ में नहीं आ रहा 10 मिलियन कहां से लाऊं, वो भी रमजान के महीने में।
मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे हाजी साहब 20 मिलियन इफ्तार पर खर्च कर रहे हैं लेकिन 10 मिलियन तुम्हें नहीं दे सकते, कर्ज चुका दो।
कर्ज? मैंने हाजी साहब से एक पैसा नहीं लिया, अब यही बचा है कि उनसे जाकर कर्ज मांगू। तुम भी कैसी बातें करते हो।
अच्छा, एक और आइडिया, मैं ऐसा करता हूँ, एक प्लान बनाता हूँ, लोगों के घर में घुस कर चोरी करते हैं।
फजूल बातें मत करो बकवत।
नहीं संजीदगी से कह रहा हूँ।
दो मिनट संजीदा रहो, मैं बहुत परेशान हूँ।
ठीक है, मैंने मजाक में ये बात कही, लेकिन तुम इसके बारे में गौर करो। मैं भी गौर करूंगा। चलो दोनों सोचते हैं, ठीक है?
हाँ ठीक है। नहीं तुम ना सोचो, मैं ही सोचूंगा। अलबत्ता पहले पार्टनरशिप के बारे में। बेवकूफ।
अरे तुमने कुछ खाया ही नहीं, आओ भाई कुछ खा लो। अरे रोजा तो खोल लो।
अरे नहीं सईद, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाया नहीं जा रहा मुझसे तो। सईद कुछ करो, मैं बहुत ही परेशान हूं, मेरी इज्जत चली जाएगी।
ठीक ठीक।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खुदा कबूल करे।
सलाम, खुदा कबूल करे। नमाज में नहीं पहुंचे?
हाजी साहब जरा ट्रैफिक में फंस गया था, माफ कीजिएगा, बस देर हो गई।
इफ्तार किया?
बस जरा सा पानी पिया है, कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा।
लो ये खजूर खाओ।
शुक्रिया हाजी साहब।
खुदा कबूल करे जरा साहब।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं तो हमेशा हाजी साहब के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। अलबत्ता मुझे उनसे शिकायत है, उनके दामाद से। इतनी इज्जत रखने वाले हाजी साहब का ऐसा धोखेबाज दामाद, बड़े अफसोस की बात है।
हाजी अहमद, ये जलाल मियां तो मेरा आसा बन चुके हैं। खुद अपनी दुकान है, अपने काम एक तरफ, हमारे घर की भी सारी जिम्मेदारी इसी बेचारे के कांधों पर है।
आपका दामाद बनना इतना आसान काम तो नहीं है हाजी साहब।
ये तो आपकी जरा नवाजी हाजी।
हमारा बेटा भी आपका दामाद बनने के लिए मुनासिब ही है, जरा इस पर भी मेहरबानी करें।
हाजी अहमद आप तो जानते हैं मेरी बच्ची अभी पढ़ रही है।
कभी तो पढ़ाई उसकी खत्म होगी हाजी साहब।
देखते हैं खुदा को क्या मंजूर है
इंशाल्लाह।
और कोई हुक्म?
बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा कबूल करे इंशाल्लाह, नमाज रोजे कबूल हों।
बहुत शुक्रिया। हाँ ये पूछना था, इफ्तारी का क्या हुआ?
हाँ आज इसी के बारे में बात हो रही थी। हाज अहमद और कुछ दूसरे लोग भी थे। हाज अहमद कह रहे थे कि आप गोश्त न पकवाए तो ठीक होगा, परेशानी हो जाएगी। कुछ लोग बता रहे थे कि बाजार में गोश्त आजकल ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। मैंने कहा कि हमारी अहलिया साहिबा आप गोश्त पकवाना चाहती हैं, मेरी पहचान है, अच्छा गोश्त मिल जाएगा। वो लोग भी मान गए, लेकिन इंतज़ाम होने में दो चार दिन तो लगेंगे ही, और ये जिम्मेदारी भी जलाल मियाँ की होगी।
आप बस हुक्म करें हाजी साहब, मैं खिदमत में हूँ, मुझे भी सवाब मिलेगा।
चेक पर साइन कर दिए हैं, कल तुम खुद ही जाकर कैश करा लेना, और हमीदी को भी एक फ़ोन कर लेना।
हमीदी?
वही जिसे गोश्त खरीदा था पिछले साल।
अच्छा,
उससे कहना अच्छा गोश्त लाए हमारे लिए।
जो हुक्म हाजी साहब, जो हुक्म।
बिस्मिल्लाह।
जलाल कोई बात हो गई है?
नहीं कुछ नहीं हुआ। असल में कुछ दिनों से रोजे की वजह से तबीयत अजीब सी हो रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था माह रमजान में।
वाकई?
हाँ भाई।
कोई और बात तो नहीं है?
और बात नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम मुतमईन रहो मासूमा, जाओ सो जाओ।
सहरी के लिए उठाऊं?
हाँ जगा देना, बहुत शुक्रिया।
ठीक है।
Thank you.
सुनो फरीबुर्ज, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। देखो ठीक है, हाँ हाँ सुनो फरीबुर्ज, खुदा के लिए देखो फरीबुर्ज, क्या फरीबुर्ज, क्या फरीबुर्ज,
10 मिनट में अजान हो जाएगी, जल्दी करें जल्दी।
उठो उठो उठो, नमाज के लिए वजू करो।
ठीक है।
जलाल मियां, ये चेक कैश करा लेना और हमीदी को एक फोन भी कर लेना।
जरूर। हेलो सईद, क्या बात है, क्या अभी कहाँ हो, सर को क्या हुआ सईद?
होना क्या था, फरीबुर्ज साहब आए थे, झगड़ा हुआ।
ओफो, लेकिन फरीबुर्ज ने तो आखिरी हफ्ते तक मोहलत दी थी।
मुझ बेवकूफ की गलती है, 1 मिलियन का उसके लिए इंतजाम कर दिया था, उसे देने के लिए कहने लगा, मेरा मजाक उड़ा रहे, मोबाइल फेंक कर मारा मेरे सर पर।
बड़ा कमीना है, मुझे मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये फरीबुर्ज मेरी बेइज्जती करना चाहता है।
अब हम क्या करें?
पता नहीं, जरा देखूं तो।
छोड़ो भी,
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
छोड़ो भाई, ठीक हो जाएगा।
ये क्या है, रमजान है भाई।
अरे भाई इतना खून बहा है मेरा, अभी तक मेरा रोजा बातिल नहीं हुआ।
100 बार तुमसे कह चुका, पार्टनरशिप के वक्त भी कहा था कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी होगा, कहा था ना।
ठीक है
सईद, कल रात बीवी के जेवरात भी देखे, नहीं थे, अपनी अम्मी के पास रखवा दिए हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं, अब तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बस यही गाड़ी बचती है, वो भी बीवी के नाम पर है, अगर इस पर हाथ रखा तो हाजी साहब को मालूम हो जाएगा, समझ में नहीं आता क्या करूं।
हाजी साहब का दामाद बनने में यही सब मसाइल हैं, आप पैसे वाले हैं लेकिन हाजी साहब के क्रेडिट।
बस करो सईद, ये बताओ क्या किया जाए।
अब भाई हम अगर कुछ कहेंगे तो आप फिर से नाराज हो जाएंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, बीच में ना बोलना, कल रात हाजी साहब की तरफ से इफ्तार है ना।
है तो?
वहाँ तुम्हारे सारे रिश्तेदार इकट्ठा नहीं होंगे।
तो?
हम दोनों साथ में चलेंगे, घर से पैसा उठाएंगे, सारा मसला खत्म हो जाएगा। जमीर वमीर की आवाज भी ना सुनना, अगले साल 20 मिलियन बल्कि 40 मिलियन हाजी साहब के बजाय तुम इफ्तार पर खर्च कर देना, ठीक है?
ये तुम क्या कह रहे हो सईद, 20 मिलियन 40 मिलियन, बस भी करो अब।
भाई दुकान चलने दो, 1 साल बाद 200 मिलियन हमारे पास होंगे, कितना अच्छा होगा। और फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि हाजी साहब के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो, फरीबुर्ज को तो जानते हो। ठीक है?
नहीं।
क्या नहीं?
ये मुमकिन नहीं।
क्या मुमकिन नहीं?
डर लगता है सईद।
फजूल में डर रहे हो, तुम खाली ओके कर दो, बाकी मेरा काम है, ठीक है?
अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम जलाल मियां,
आप खैरियत से हैं?
खुदा का शुक्र है। ये तो तुम्हारी दुकान पर रहने का वक्त है।
हाजी साहब इफ्तार के वक्त ग्राहक नहीं आते, मैंने सोचा दुकान बंद कर दूं।
ये क्यों नहीं कहते कि इफ्तार से पहले मूड में।
सलाम अलैकुम हाजी साहब।
वालेकुम सलाम।
मैं ले जाता हूँ,
सलामत रहो बेटा।
क्या हुआ हाजी साहब?
कीमत लग गई है।
कितनी?
200 मिलियन
200 मिलियन इसके लिए?
और क्या, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये नासिरुद्दीन शाह के जमाने का है?
हाँ जलाल मियां, कई नस्लों से हमारे खानदान में है ये। मेरे ख्याल में हमारी दादी की दादी ने बुना था इसे।
तो ठीक है, लाइए।
ज़हमत
अब मैं ले जाऊं?
लाइए, मैं ले जाता हूँ।
नहीं बेटा, नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगी, तुम ज़हमत
एहतियात कीजिएगा।
हाँ तो जलाल बेटा, कैश कराया?
जी।
हमीदी को फोन किया?
जी।
गोश्त का ऑर्डर दिया?
जी।
मैं शुक्रगुजार हूँ।
जी जी।
सलामत रहो बेटा, रोजा रख के बड़ी जहमत की तुमने।
नहीं आजी साहब, ये तो मेरा फर्ज था, कम से कम इतना तो करना ही था मुझे इफ्तार।
अभी बहुत से काम बचे हैं।
जी बिल्कुल।
मेरा कोई बेटा तो है नहीं, कल किचन में भी मेरी जगह तुम्हें ही रहना होगा।
किचन में? जी रहूंगा। और आप कहाँ होंगे हाजी साहब?
मैं भी वहीं रहूंगा आपकी खिदमत में, अगर इजाजत हो तो।
कैसी बात कर रहे हैं, हम आपकी खिदमत में हैं।
बेगम साहबा, अच्छा मुझे इफ्तार से पहले जगा दीजिएगा।
अच्छा ठीक है।
जलाल अंकल।
हाँ बेटी बोलो। हाँ बोलो।
मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है।
इंशाल्लाह ठीक होगा।
आप और बाबा भी उसमें थे, आप रो रहे थे।
मैं रो रहा था?
जी।
देखो बेटी, अगर बुरा ख्वाब देखा तो उसे किसी को मत बताओ, ठीक है? किसी को ना बताओ वो ख्वाब, अच्छी बात नहीं, ये जानती थी?
जी लेकिन।
अरे कहा ना कुछ ना बताओ, बताना अच्छी बात नहीं है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में।
अच्छा।
शाबाश बेटी, अब जाओ किचन में अपनी बहनों के पास, वो सब इफ्तार तैयार कर रही है, उनकी मदद करो।
अच्छा।
खुदा।
फरीबुर्ज ने सुबह से अब तक 50 बार तो फोन किया ही होगा, एक एक दिन गिन रहा है वो। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रास्ता बचा है, चलो हाजी साहब के पैसे चुराते हैं। तुम पर कोई शक नहीं करेगा, आज हाज अहमद की तरफ से इफ्तारी होगी, सब लोग वहीं होंगे। तुम बस चाबियां मुझ तक पहुंचा दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा।
हेलो जलाल।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी हाजी साहब।
देखो बेटा,
मैं ये कहना चाहता था कि जरा घर जाओ और सब लोगों को हाजी अहमद की इफ्तारी के लिए ले आओ, और पैसे भी
रख लेना, ये गोश्त वाला कह रहा था कि जल्दी आएगा।
तो क्या वो इफ्तार से पहले ही आएगा?
हो सकता है। जलाल
जल्दी करो, तुम्हारी सास साहिबा अगर दुआ से पहले
नहीं पहुंची तो हंगामा कर देंगी।
जी हाजी साहब ठीक है।
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
इतना हार क्यों बजा रहे हो?
नीचे कब आओगी?
बच्चे तैयार हो जाएंगे तो ही चले ना।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ?
तुम खुद यहाँ क्या कर रहे हो?
यहाँ क्यों आए हो उल्लू? हाजी साहब के घर के सामने सिगरेट भी पी रहे हो, और माहे रमजान में अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो सिगरेट देखकर जरूर रुक जाएगा।
तुम खुद 100 पुलिस वालों से बदतर हो, तुम इस वक्त तो हाजी साहब के पास होना चाहिए था।
हाँ सही, लेकिन प्रोग्राम बदल गया। सुनो मैं तुम्हें यही बताने के लिए फोन कर रहा था, मैं यहाँ खवातीन को लेने आया हूँ इफ्तारी में, मैं अभी वापस जाऊंगा। सही, अच्छी तरह से सुन लो, मुझे गोश्त के पैसे इसी वक्त ले जाना है, हाजी साहब के पास गोश्त लेने आ रहा है।
हम लोगों की किस्मत ही खराब है।
सईद, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।
एक मिनट सुकून से रहो, जरा सोचने दो, बौखलाओ मत। इस वक्त हमें गौर करना होगा, पूरी तवज्जो से एक गहरी सांस लो। देखो तुम अभी खवातीन को लेकर जाओ और हाजी साहब से कहो कि गोश्त के पैसे लाना भूल गया।
ठीक है, मैं कह दूंगा पैसे लाना भूल गया, यही। इसके बाद?
उसके बाद यहाँ आ जाओ और हाजी साहब को फोन करके कह दो कि पैसे नहीं है, चोर घर से ले गया। जलाल, ये फरीबुर्ज बहुत उल्टे दिमाग का आदमी है, यहाँ आकर हंगामा खड़ा करेगा और तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा।
खुदाया मैं क्या करूं।
जलाल,
ओह जलाल जाओ, वो लोग आ गए।
जलाल मियां, कुछ बताओ कि ये जल्दी काहे की थी।
अच्छी बात नहीं है।
माफ कीजिएगा हाजी साहब, भूल गया, मैं भी लेकर आता हूँ।
जलाल जरा जल्दी आना।
जी, यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, लेकिन अब बुरी तरह फंस गया हूँ। तू ही बता खुदा, मैं क्या करूँ। खुदाया खुदाया, अगर मेरा चेक बाउंस हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अगर मोहल्ले में पुलिस आ गई गिरफ्तारी के वारंट के साथ और हथकड़ी लगाकर मुझे ले गई तो मैं हाजी साहब का सामना कैसे करूंगा। उन्होंने मुझे जैसे अपने नौकर को अपना दामाद बनाया, हमेशा मुझ पर भरोसा किया, हमेशा उनकी चेकबुक मेरे पास ही रहती थी, और मैं पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत खाक में मिला दूं। जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए हाजी साहब की मिन्नतें कर रहे थे, उनकी इज्जत खाक में मिला दूं। नहीं, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मुझसे क्या मतलब, मैं जब घर पहुंचा तो पैसे थे ही नहीं। हाँ हाँ, जब घर पहुंचा तो देखा नहीं। माफ कर दे खुदा, खुदाया सब कुछ तबाह हो रहा है। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि अब तक मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, मुझे माफ कर दे। खुदाया मैंने गलती की, मेरी तौबा कबूल कर ले, लेकिन मेरी मदद कर पालने वाले, मैं तलाफी कर दूंगा। कसम खाता हूँ पालने वाले, कसम खाता हूँ इस मुबारक महीने की, इस इफ्तार के दस्तरखान की कसम खाता हूँ कि अगले साल इतने ही पैसे इसकी जगह पर रख दूंगा। कसम खाता हूँ मैं इसे ज्यादा रख दूंगा, कसम खाता हूँ।
तुम हो कहाँ?
ट्रैफिक में फंस गया था, सड़कों पर रश है बहुत ज्यादा। दरवाजा बंद कर देना।
पैसे मुझे देकर घर की चीजें इधर उधर बिखेर दो ताकि महसूस हो कि चोर आए थे।
हाजी मराशी,
क्या बात है?
आप हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
गोश्त ले आया हूँ।
खुद अमीरी कहाँ है?
अमीरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हमसे कहा कि गोश्त ले जाओ, हमारी कंपनी अलग है।
ठीक है, किचन में लाकर रख दो।
माफ कीजिएगा जनाब, पहले रकम लूंगा।
अमीरी तो ऐसा नहीं था।
बताया तो हाजी साहब, माल अमीरी का नहीं है।
ठीक है, जितनी देर में तुम गोश्त किचन में रखोगे पैसे भी आ जाएंगे।
माफ कीजिएगा जनाब, میرے باس نے کہا پہلے پیسے.
کیا چوری کا مال بیچ رہے ہو کہ پہلے پیسے چاہیے بھائی صاحب؟ ارے یہ گوشت افطاری کے لیے ہیں, ہم تمہارے پیسے تو نہیں کھائیں گے.
بھیا بات یہ ہے کہ فاتح خانی میں گوشت لے گئے تھے, وہاں پہنچے تو کہا کہ گوشت کچن میں رکھ دو. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد سے آج تک پیسے کے لیے چکر لگا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, ہے نا؟
ٹھیک ہے, ذرا ٹھہرو, ابھی پیسے آ رہے ہیں.
جلال, جلال زندہ ہو؟ بات کر سکتے ہو؟ ہاں
بول بھی سکتا ہوں اور تمہیں قتل بھی کر سکتا ہوں.
انسان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن قتل غلط بات ہے.
ارے احمق, اگر ذرا زور سے مارا ہوتا تو میرا کام تمام تھا.
کیا میں اتنی زور سے مار سکتا ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟
ارے واہ چھوٹے حاجی صاحب, جاگ گئے. کچھ منٹوں تک ہی بے ہوش رہنا.
اے دھوکے بازو, تم دونوں ملے ہوئے ہو؟
ہم ایک ساتھ تھے بھائی جان, البتہ تم اب تک ہمارے ساتھ نہیں تھے.
البتہ اب تم چاہو یا نہ چاہو ہمارے ساتھ ہو.
کمینو!
شہ, کیا کر رہے ہو؟
میرے ہاتھ کھول دو. یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ 20 ملین میں سے مجھے حصہ نہ دو. ہاں کمینو, میرے ہاتھ کھول دو.
20 ملین 200 ملین.
کیا یہ کیا کہہ رہا ہے؟
ماجرا ایک پرانے کارپیٹ کا ہے جس کے لیے 1-2 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. یہاں ایران میں اس کی قیمت 200 ملین ہے, لیکن باہر میرے خیال سے 7-8 گنا زیادہ ہوگی. کیوں صحیح؟
اے حرام خورو.
کیوں بھائی, اگر 20 ملین ہو تو حرام نہیں ہے اور 200 ملین ہو تو حرام ہے؟
غالیچہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ, پریشان نہ کرو.
اس طرح سے کیوں مار رہے ہو؟ زخمی ہے بھائی,
اسے مارنے دو. مارو, سر پر مارنے سے تو بہت بہتر ہے.
میں نے مارا تھا, اس نے مارا تھا. تم اب بھی میرے پارٹنر ہو, اگر ہماری بات مان لو گے تو تمہارا حصہ بھی تمہیں ملے گا. البتہ اتنا نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو, لیکن کچھ نہ کچھ تو دیں گے. اچھا سنو, اذان تو ہو گئی ہے, پانی پی سکتا ہوں؟
ارے بھیا تھوڑی دیر رک جاؤ, ان کا داماد ابھی پیسے لے کر آ رہا ہے.
چھوڑے بھیا, لانا ہوتا تو اب تک لا چکا ہوں.
بھائی آپ کیوں اس طرح کی بدگمانی کرتے ہیں؟
حاجی صاحب, میرے اس مال کا لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے وقت برباد نہیں کر سکتا.
یہ خدا کے روزہ دار بندوں کے افطار کے لیے ہے, میں اس میں سودے بازی تھوڑی ہی کر رہا ہوں.
حاجی یہ بھی سودا ہے خدا کے ساتھ. آپ نے خوب کمائے ہیں جو اس طرح خرچ کر رہے ہیں, وہ بھی افطار پر. قانوناً آپ کو اس کا کئی گنا خدا سے مل چکا ہوگا.
شرم کرو بھائی, میں ان کے کریڈٹ میں بلینک چیک پر دستخط کر دیتا ہوں.
جناب آپ گوشت لے جائیں, یہ افطاری میری چھوٹی بیٹی کی منت تھی, اور کوئی بات نہیں ہے. آپ تشریف لے جائیں.
برا لگ گیا حاجی صاحب.
تشریف لے جائیں.
ٹھیک ہے, خدا حافظ.
جاؤ خدا حافظ.
اچھا تو آپ بھی سن لیجئے, جو چیک کی بات کر رہے تھے اس پر صحیح ٹائم پر دستخط کریجئے گا تاکہ دوسرے کا وقت برباد نہ ہو.
چلے اندر چلتے ہیں حاجی صاحب.
میں گھر جا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہوا.
حاجی صاحب جہاں بھی ہوگا ابھی آ جائیں.
اب اس کے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری عزت تو گئی, کل کی افطار کے کیا ہوگا؟
خدا کریم ہے, میں حمیدی کو فون کر دوں گا.
حاجی احمد, میری افطاری کبھی لیٹ نہیں ہوئی تھی.
شاید کوئی حکمت ہو اس میں.
حکمت کیا ہوگی, اسے لاپرواہی کہتے ہیں.
یہ سب کیوں کر رہے ہو, یہ سب کیوں کر رہے ہو؟
2 سال پہلے میں پتا چلا کہ وہ غالیچہ تمہارے حاجی صاحب کو ملنے والا ہے, تبھی سے پلاننگ کر رہے تھے کہ کیسے ان کے قریب جایا جا سکے, اور اسی لیے میں تمہارا پارٹنر بنا. اصل میں ہمیں صحیح معلومات چاہیے تھی, اس کے بعد حساب کتاب میں گڑبڑی کر کے ایسے کام کیے کہ تم مقروض ہو جاؤ. پھر میں نے فریبرز کو پیسے دے دیے کہ وہ تمہیں دے دے. اس طرح سے میں تمہیں چوری میں اپنے ساتھ تعاون کے لیے مجبور کرنا چاہتا تھا. اصل میں ہماری پرابلم صرف یہ تھی کہ ہم اس گھر میں گھس نہیں سکتے تھے, کیونکہ یہاں تو کسی میوزیم کی طرح مختلف حفاظتی آلات نصب ہیں.
ہاں بہت ہیں.
پلان کیسا تھا؟
یہ اتنا بڑا گھر ہے کہ تمہیں ابھی تک وہ غالیچہ نہیں ملا؟
नहीं, हर जगह देख लिया, बस एक कमरा है जिसमें ताला लगा है।
बस वही होगा। उसकी चाबी कहाँ जलाल साहब?
चाबी? उसकी चाबी हाजी साहब के पास है, चाहो तो उनसे जाकर ले लो।
चाबी तो तुम्हारे ही पास है, तुम वो गोश्त के पैसे लेने के लिए ही तो आए थे ना?
हाँ सही है, क्योंकि पूरे घर में वो 20 मिलियन पैसे कहीं नहीं मिले।
वो पैसे भी वहां हैं और वो गालीचा भी। क्यों जलाल साहब, अब चाबी दोगे?
जलाल, जलाल मियां,
इस मार के बाद तो उसका किस्सा खत्म है।
एक्टिंग कर रहा है, बड़ा सख्त जान है, फिर लगाऊं क्या एक?
हम यहाँ कत्ल करने नहीं, चोरी करने के लिए, वो भी गालीचे की। चलो मैं देखता हूँ कमरे को खोला जा सकता है या नहीं।
जलाल,
सईद,
चुप, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ।
जलाल, जलाल मियां,
क्या हुआ?
बेहोश है, उसके पास चाबी नहीं थी। घटिया आदमी, झूठ बोल रहा था।
मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। डरो नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, हाजी साहब के लिए ऐसा कर रहे हैं।
नहीं, मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। बस गालीचा लेकर यहां से निकल जाना है, ठीक है?
अरे हम तो आए इसी के लिए हैं।
गड़बड़ हो जाएगी, देर ना कर, बता बता।
ठीक है, ठीक है,
बता बता, जल्दी बता।
वहां वॉल क्लॉक में एक चाबी है, बगल के कमरे में।
पार्टनरशिप अच्छी नहीं है, और ये गालीचा तो मेरा ही था। सही खुदा गवाह है।
हरिपुर,
कमीने!
हेलो पुलिस।
खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है हाजी साहब, खुदा ने फिर भी बड़ा रहम किया है।
खुदा का शुक्र, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हुआ।
अरे अब्बा खत्म करें, जो भी था खत्म हो गया, खुदा का शुक्र है।
लेकिन मैं तो अपनी मन्नत पूरी कर रहा था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देख रही हैं आप, कितना ख्याल रखा है कि माले हराम घर में ना आने पाए, नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्या गलती हो गई जो मेरे पैसे खुदा ने कबूल नहीं किए, वापस दे दिए।
क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब? इतनी बड़ी दुनिया में हर रोज हजारों हादसात होते हैं, क्या सबकी वजह हमारी समझ में आती है?
बिल्कुल नहीं।
चोरों का क्या हुआ?
अदालत में पेशी तक जेल में रहेंगे।
अब्बा, जलाल को बड़ी शर्मिंदगी है कि सईद भी चोरों के साथ था।
मुझे पहले ही ये पार्टनरशिप पसंद नहीं थी, चलो अब उसे खुद ही मालूम हो गया। लेकिन इन सब बातों से जलाल के लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं होगी। अगर वो ना होता तो गालीचा भी हाथ से गया था, वो परेशान क्यों है?
गाड़ी बेचना चाह रहा है।
क्यों नहीं, मेरी दुकान है, क्या बात हो गई? क्या, कब, क्या मतलब, ऐसे कैसे? ओ, अभी कौन है वहां पे? अच्छा, बुझा दी माल। ओहो ओहो ठीक है शुक्रिया। मासूमा मासूमा
क्या हुआ?
दुकान दुकान जल गई।
क्या?
अभी मार्केट से फोन आया था, शॉर्ट सर्किट हुआ और कई दुकानें जल गई, सारा माल जल गया।
अरे नहीं
खुदाया। लगता है अभी ज्यादा दूर नहीं हुआ मैं।
क्या मतलब है तुम्हारा?
मेरा मतलब है कि नहीं छोड़ो जाने दो।
अब तुम क्या करोगे?
फिर से शुरू करूंगा जीरो से अकेले। खुदा मेरे साथ है।
कौन है? सलाम अलैकुम हाजी साहब, आ जाइए। अहमद अंकल हैं।
हाजी साहब का क्या हाल किया?
आपके हाजी साहब के हिस्से में अब सिर्फ शर्मिंदगी है। इफ्तार में देर हो गई।
आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके दुश्मन शर्मिंदा हो? आपको मालूम ही नहीं है हमीदे ने सुबह सुबह मुझे फोन किया, बहुत शर्मिंदा था और कल के वाक़े पर माफी मांगी। फिर कहने लगा कि अस्पताल से फोन कर रहा है। बता रहा था कि वो जो आदमी कल गोश्त लेकर आया था वो उसका दोस्त था। कल रात उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका माल नहीं बिका, तो उसी गोश्त में से थोड़ा सा घर के लिए निकाल लिया। उसकी बीवी ने पकाया और दोनों ने खाया। गोश्त खाते ही दोनों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल सारे का सारा गोश्त ही खराब हो गया था हाजी साहब।
अल्लाह।
अब जरा सोचिए हाजी साहब, अगर जलाल के साथ ऐसा ना हुआ होता और आप भी इस तरह से ना फंसे होते और पैसे लाकर गोश्त वाले को दे दिए होते, तो उसके बाद हजारों मेहमानों का क्या हाल होता? आपको अफ्तार कराने के बाद सबको अस्पताल भेजना पड़ता। हमीदी कह रहा था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर कहने लगा कि कल सुबह सवेरे मैं खुद गोश्त भेजूंगा आपके लिए, फिक्र ना करें। अब भी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ?
अब क्या कहूं, असल बात तो हमारी बेगम ने कही। हजारों वाकयात होते हैं जिनकी वजूहात का हमें इल्म नहीं होता। ये जलाल ने भी पता नहीं क्या किया था जो इस मुसीबत में फंस गए। क्यों जलाल मियां, दुकान में आग लगने में भी खुदा की कोई मसलहत होगी?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, जरूर मसलहत होगी।
بسم الله اللهم لك صمنا لك افترنا فتقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على